I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.
HD Smartcast. You are listening to an HD Smartcast original.
आइए मैं राणा सफी आपको ले चलती हूँ इतिहास की अनदेखी गलियों में मेरे पॉडकास्ट अनजाने रास्ते के जरिए। चलिए आज माझी और बनगंगा दरिया के संगम के ठीक सामने एक सीधी और ऊंची चट्टान पर बने हुए एक किले में चलते हैं। लेजेंड्स के हिसाब से ये राजा सुशर्मचंद्र से जुड़ा हुआ है जो त्रिगर्त के राजा थे और उनका जिक्र कई बार हमको महाभारत में मिलता है। उस जंग में इन्होंने कौरवों का साथ दिया था। महाभारत खत्म होने के बाद उन्होंने ये शहर और किला बनवाया। किले को कोट कहते हैं और इस किले को नागर कोट, और इसी से कहते हैं कि यहाँ के राजवंश को उनका नाम मिला यानी के कटोच। ये भी कहते हैं कि राजा परमानंद ही पोरस थे जिन्होंने अलेक्जेंडर से लड़ाई की, जिनको तेजस का खिताब मिला जो बाद में बिगड़कर पोरस बन गया, लेकिन हमको इसके खैर कोई तारीखी प्रमाण नहीं मिलते। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं कि ये बहुत पुराना किला है और यहाँ का राजवंश भी बहुत ही पुराना। इसकी कहानियां तो मैंने बहुत सुनी थी। जैसे कि मैंने शुरू में ही अर्ज किया, ये एक ऐसे मकाम पर बना हुआ है जिसकी वजह से ये किला इम्प्रेग्नेबल यानी के नाकाबिले तश्कीर या अभेद्य है। इस मकाम की वजह से इसको ये फायदा होता है कि यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है, वो चट्टाने चढ़ना आसान नहीं है, तो इसके मतलब यहाँ पे सिर्फ सड़क से ही आ सकते हैं, और सड़क तो आपको मालूम है, उसको आराम से उसकी दिफा हो सकती है, फौज तैयार रहती है दुश्मनों के लिए। एक किताब शश फतेह कांगड़ा जो लिखी गई थी मुगल बादशाह जहांगीर ने जब इसको फतेह किया था, इस किले के बारे में कहती है, कांगड़ा का किला बहुत बुलंद है और एक ऊंची पहाड़ी पर वाकई है। इसके अंदर की इमारतें बहुत ही खूबसूरत हैं। ये इतना पुराना है कि कोई नहीं बता सकता कि ये कब बना था। ये बहुत मजबूत है और आज तक कोई बादशाह इसको फतेह नहीं कर पाया। जो भी तारीख जानता है उनकी इसके बारे में सबकी एक ही राय है कि शुरू से आज तक एक ही खानदान का कब्जा इस किले पर रहा। ये तो रही जहांगीर के जमाने की तारीख, लेकिन मैं आपको इससे और भी पीछे ले चलती हूँ, जलंधर पुराण में। कांगड़ा नाम के पीछे एक बहुत दिलचस्प कहानी है। कहते हैं कि इसका कदीमी नाम कानगढ़ था। कान तो आप जानते ही हैं, आप मुझको सुन रहे हैं, और गढ़ यानी के किला। कहानी यूं है कि भगवान शिव ने ये एक देव राक्षस जिसका नाम जलंधर था उसको खत्म किया और इन पहाड़ियों में उसका कान दफन कर दिया। उसको भगवान ब्रह्मा से वरदान मिला हुआ था कि इसका कोई कत्ल नहीं कर सकता, और काफी कोशिशों के बाद आखिर में भगवान शिव ने उसको दफन कर दिया। अशोक जेरत ने अपनी किताब फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ द वेस्टर्न हिमालय में लिखा है कि उस राक्षस का जिस्म इतना लहीम शहीम था कि 40 कोस जमीन में उसको दफनाया गया। कांगड़ा वैली में उसका सर दफन है और किले के नीचे उसके कान। उसका मुख जो है वो ज्वालामुखी के नीचे दफन है और उसकी पीठ जलंधर में, और उसके पैर मुल्तान में। सच में देव ही था। और यह कि राजवंश का एक नाम जलंधर भी था, और यह किस्सा जलंधर पुराण में जैसे कि मैंने अर्ज किया बयान किया गया है। इस किले के अंदर एक बहुत प्राचीन मंदिर है। यहाँ के राजवंश की कुल देवी देवी अंबिका हैं। इस मूर्ति पर बहुत चढ़ावा आता है और ये किला बहुत ही दौलतमंद और ताकतवर था। जिसका इख्तियार इस किले पर था, उसी का इख्तियार यानी के कंट्रोल पहाड़ियों पर भी था। इस वजह से इस किले को फतह करना बहुत अहम बन गया लोगों के लिए। 52 बार इस किले को फतह करने की कोशिश हुई। सबसे पहला हमला कश्मीर के राजा श्रेष्ठ ने किया था 470 ईस्वी में। इसकी दौलत के किस्से बहुत मशहूर हैं। कहते हैं यहाँ खजानों के कुएं हैं और जिनको कई लोगों ने लूटने की कोशिश की। महमूद गजनी ने इसको लूटा। कहते हैं कि वो इतनी तेजी से उसने हमला किया कि दरवाजे बंद करने का वक्त न मिला। ज्यादातर कटोच फौज उस वक्त कांगड़ा के राजा जगदीश चंद्र के साथ कलूटा यानी कि आज का कुल्लू के राजा के साथ जंग करने गई हुई थी। 21 खजाने के कुएं थे यहाँ पे, जो 4 मीटर गहरे और 2.5 मीटर गोल थे। महमूद गजनी ने 8 को लूटा। 1890 के दशक में अंग्रेजों ने 5 कुएं यहाँ पे ढूंढे और यहाँ के लोगों का मानना है कि अभी भी 8 कुएं यहाँ छुपे हुए हैं, खजाने से भरे हुए। बहरहाल अब हम तारीख की तरफ आते हैं। 1620 में जहांगीर की फौज शहजादे खुर्रम के कमांड में इसको फतह करने के लिए भेजी गई। शहजादे खुर्रम, जो बाद में शाहजहां के नाम से तख्तनशीं हुए, बहुत लंबा मुहासरा यानी कि सीज की और इसके बाद कहीं जाके किले पर जीत हासिल हुई। 1622 में बादशाह जहांगीर और उनकी मलिका नूरजहां यहाँ आई। उनको यहाँ की कुदरती खूबसूरती इतनी पसंद आई कि हुक्म हुआ कि एक महल उनके लिए बनवाया जाए, लेकिन वो महल नामुकम्मल रहा। बहरहाल एक दरवाज़ा ज़रूर बना जिसको जहांगीरी दरवाजे के नाम से बुलाया जाता है। 1779 में महाराज संसार चंद ने इसको वापस हासिल किया और ये किला फिर से कटोच राजवंश के पास आ गया। 1828 में महाराजा संसार चंद के इंतकाल के बाद यह किला महाराजा रंजीत सिंह के कब्जे में आया और 1846 में अंग्रेजों के हाथ आया, एंग्लो सिख वॉर के बाद। राजा संसार चंद को अदब और कला में बहुत दिलचस्पी थी। उन्हीं के हैद में यहाँ पे मिनिएचर पेंटिंग्स बनी जिसको कांगड़ा कलम या कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ मुगल मिनिएचर स्टाइल और हिंदू आइकोनोग्राफी उरूज पर पहुंची। श्रृंगार रस में बने हुए श्री कृष्ण और राधा जी की तस्वीरें बहुत मशहूर हैं। भगवत पुराण और गीत गोविंद यहाँ के ऊपर एक बहुत पॉपुलर थीम थी। ये भक्ति मूवमेंट से प्रभावित हैं और इंसान की रूह का भगवान से मिलन और लगाव दर्शाते हैं। और यहाँ की कुदरती खूबसूरती देखते हुए कोई इसमें ताज्जुब की बात नहीं है कि यहाँ की कांगड़ा पेंटिंग्स की खासियत उसकी हरियाली है। मैं तो यहाँ आपको कहानी सुनाते सुनाते आसानी से आ गई। हाँ, सांस जरूर फूली। कोई शक नहीं कि यह किला और इसके कई शानदार दरवाजे दिल को लुभाते हैं, लेकिन जब मैं रंजीत दरवाजे के चोर दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी तो मेरे गाइड ने कहा कि यहाँ एक पुरानी कहावत है, पहले सर नहीं पांव अंदर रखते हैं। अगर दुश्मन अंदर आपका इंतजार कर रहा है तो वो सिर्फ पैर ही काट सकता है, सर नहीं। अच्छा, चोर दरवाजे उस छोटे दरवाजे को कहते हैं जो बड़े बड़े आलीशान दरवाजों में एक कोने में बना हुआ होता है, ताकि उसको आसानी से कंट्रोल कर सकें कि कौन अंदर दाखिल हो रहा है। मासर अल उमरा जो 18वीं सदी में लिखी गई है, वो बयान करती है कि यहाँ पे 23 बैस्टियंस और 7 दरवाजे हैं। किले के अंदर दाखिल होने वाला दरवाज़ा तो रंजीत सिंह दरवाज़ा है और उसके ऊपर इंस्क्रिप्शन में उसकी तफसील दी हुई है। एक पतली और लंबी गली से हम अहानी और अमीरी दरवाज़ा से गुजरे। ये नवाब सैफ अली खान जो यहाँ के पहले मुग़ल सूबेदार थे, उन्होंने बनवाए थे। फिर मानो दोनों तरफ से दीवारें हट गईं, हम खुले मैदान में आ गए। सीढ़ियाँ तो अभी भी थीं लेकिन चारों तरफ का नज़ारा रूह को तरोताज़ा कर रहा था। थोड़ा सुस्ताया और फिर आगे बढ़े। जहांगीरी दरवाजे पर मुग़ल फतेह के सारी तफसील बयान की गई है। इसके बाद एक बहुत ही मजबूत अंधेरी दरवाजा है जो 7 मीटर लंबा और सिर्फ 2 ही आदमी या 1 घुड़सवार उसके अंदर एक वक्त में जा सकते हैं, और इसके दोनों तरफ 15 फीट ऊंची दीवारें हैं। वक्त का तो मानो पता ही नहीं चला। आपसे बात करते करते मैं दर्शनी दरवाजे पहुंच गई हूं, तो चलिए आपको भी दर्शन करवाती चलूं। इस दरवाजे के दोनों तरफ गंगा जी और यमुना जी की मूर्तियां हैं। पहले आप इनके दर्शन से पाक हो लीजिए, फिर हम अंदर महल चलते हैं जहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लक्ष्मी नारायण और अंबिका देवी का मंदिर है। यहां पर जो मूर्तियां हैं उनकी बनावट इतनी उम्दा है कि शायद आपको खुद देखकर ही अंदाजा होगा। अफसोस कि जो किला इतनी मजबूती से दुश्मन के सामने खड़ा रहा, कुदरत से हार गया। 1905 में एक जलजले में इसकी इमारतें टूट गईं। फिर भी आप आंखें बंद करके सोचिए कि ये उस जलजले में टूटने से पहले क्या रही होंगी। कटोच वंश के लोग आज भी आते हैं अंबिका देवी की पूजा करने के लिए। महलों के दरवाजे से राजा के अपने रहने की जगह यानी कि निजी इलाके में चलते हैं। ये बुरी तरीके से भूकंप में तबाह हुआ, फिर भी जो बचा है उसको देखकर यही कह सकते हैं, जमीन खा गई आसमान कैसे कैसे। यहां पर एक बहुत मशहूर और कदीमी जैन मंदिर है जिसमें तीर्थांकर ऋषभनाथ की मूर्ति है, इनको नमन करते चलते हैं। मंदिर तो जलजले में टूट गया लेकिन भगवान की कृपा से ये मूर्ति बच गई और एक छोटे से कमरे में विराजमान है। यहाँ पे कई लोग इसकी तीर्थ के लिए आते हैं। जब मैं अंदर महल में पहुंची और खंडरों को देखा तो ये याद आया कि हर चीज दुनिया में आने जानी है, कोई चीज हमेशा के लिए नहीं रहती। यहाँ पे एक 7 मंजिला महल हुआ करता था, अब उसके खंडर हैं। बहरहाल खंडरों पे खड़े होके मैंने उस वादी का नजारा किया। हवा के झोंकों में खड़े होकर मैंने उस मंजर को अपने दिल में खींचने की कोशिश की जब यहाँ के ऊपर राजा रहते थे और ये खंडर खड़े हुए थे। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें जरूर बताइएगा @htsmartcast पर ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक के जरिए। अगर आपको इस पॉडकास्ट पर इतिहास से जुड़ी कोई और कहानी सुननी हो तो आप मुझ तक पहुंच सकते हैं ट्विटर के जरिए @IamRana, इंस्टाग्राम पे @RanaSafi। और ऐसे और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने के लिए लॉग ऑन टू www.htsmartcast.com।
दिस वॉज एन HT Smartcast ओरिजिनल।
I'm Annie Apple, and I'm here to invite you to come and listen to my new podcast series, Raising a Pro. It's the most intimate sports-related conversations you will hear. Each week, we explore the journeys of some of your favorite NFL players through the eyes of those that know them best. From Joe Burrow, DeAndre Hopkins, Myles Garrett, Ezekiel Elliott, Nick and Joey Bosa, just to name a few. With exclusive insights and information, we leave no stone unturned. Subscribe now to Raising a Pro on your favorite podcast app.